मतलब सोचिए कि कोई इंसान शांति और एक बिल्कुल नई विचारधारा लेकर किसी अनजान शहर में जाता है। वहां के लोग उसके काम देखकर अचानक, मतलब अचानक उसे भगवान मान लेते हैं।
हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे खुश करने के लिए उसके सामने एक बैल की बलि देने की तैयारी भी करने लगते हैं।
बिल्कुल, ये अपने आप में कितना अजीब है ना, लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। ठीक अगले ही दिन किसी अफवाह के फैलने पर वही भीड़ जो उसे पूज रही थी अचानक पत्थरों से मार मार कर उसे अधमरा कर देती है
और शहर के बाहर फेंक देती है। मतलब ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी हो।
हाँ, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, ये संचार कूटनीति और भीड़ की मानसिकता का एक बहुत ही वास्तविक ऐतिहासिक उदाहरण है। तो आज हम इन्हीं ऐतिहासिक स्रोतों की गहराई में जाने वाले हैं।
सही कहा, और इसके लिए हमारे पास डॉक्टर क्रेग कीनर का एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक और वैचारिक विश्लेषण है। ये प्रेरितों के काम, मतलब जिसे हम एक्ट्स कहते हैं, उसके अध्याय 13 से 15 पर आधारित है।
तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हम ये समझना चाहते हैं कि प्राचीन काल में जब कोई स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं था, तब इतने जटिल संदेशों को अलग अलग संस्कृतियों तक कैसे पहुंचाया जाता था।
बिल्कुल, और शुरुआती समुदाय अपने गहरे सांस्कृतिक टकरावों को कैसे सुलझाते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2000 साल पुराने ये कूटनीतिक तरीके, मतलब आज की इस ध्रुवीकृत दुनिया में भी संचार की मास्टर क्लास कैसे साबित हो सकते हैं।
तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पिसिडियन अंताकिया नाम की एक जगह आती है। वहाँ पॉल नाम का एक व्यक्ति यहूदी प्रार्थनालय में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है।
हाँ, और वहाँ उसकी रणनीति देखने लायक है। वो सीधे अपनी बात नहीं थोपता। प्रार्थनालय सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं थी, वो उस समुदाय का केंद्र था।
तो वो सीधे अपने नए विचार लेकर वहाँ नहीं गया?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो पुराने नियम का गहरा सहारा लेता है। वो भजन संहिता, यशाया की भविष्यवाणियों का उपयोग करता है। मतलब वो उनके 450 वर्षों के इतिहास का हवाला देता है।
अच्छा, मतलब वो राजा डेविड का भी जिक्र करता है शायद?
हाँ, वो याद दिलाता है कि डेविड की कब्र तो आज भी मौजूद है। वो मूल रूप से एक पुल बना रहा था उन लोगों के साथ।
हाँ, यानी ये साबित करने की कोशिश थी कि ये कोई नया या बाहरी संप्रदाय नहीं है, बल्कि उसी पुरानी कहानी का अगला हिस्सा है।
एकदम सटीक। पॉल उन यहूदी श्रोताओं को उन्हीं के धर्म ग्रंथों से समझाता है कि ईसा मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ, यहाँ तक कि उनका सूली पर चढ़ाया जाना भी कोई विफलता नहीं थी।
क्योंकि उस समय तो सूली पर चढ़ाया जाना एक बहुत बड़ी हार माना जाता था ना?
हाँ, भारी अपमान माना जाता था। लेकिन पॉल समझाता है कि वो ईश्वर की संप्रभु योजना, मतलब गॉड्स सॉवरेनिटी का हिस्सा था।
बहुत खूब, लेकिन यहाँ एक कड़वी वास्तविकता भी सामने आती है। इतनी तार्किक बात रखने के बावजूद हर कोई उस विचार को स्वीकार नहीं करता है।
बिल्कुल, वहाँ के कुलीन वर्ग की महिलाओं के भारी विरोध के कारण, जो उस शहर की राजनीति में बहुत प्रभाव रखती थीं, उनके कारण पॉल और बर्नबास को शहर छोड़ना पड़ता है।
प्रतीकात्मक है, वो अपने पैरों की धूल झाड़ते हैं।
हाँ, और प्राचीन मध्य पूर्व की संस्कृति में ये समझना बहुत जरूरी है, पैरों की धूल झाड़ना कोई मामूली नाराजगी नहीं थी।
मतलब ये एक तरह का अपमान था।
बहुत गहरा अपमान। उस समय यहूदी लोग मानते थे कि मूर्ति पूजक स्थानों की धूल भी अशुद्ध होती है। तो जब वो एक यहूदी शहर के बाहर धूल झाड़ते हैं, तो वो कह रहे थे कि अब ये जगह भी हमारे लिए अपवित्र हो गई है।
बाप रे, ये तो एक सख्त विचारक लकीर खींचने जैसा था। खैर, इस तनावपूर्ण विदाई के बाद वो इकोनियम नाम की जगह पहुंचते हैं, जहां भाषा की एक बहुत बड़ी दीवार उनका इंतजार कर रही थी।
हाँ, वहां के लोग फ्रिगियन बोली बोलते थे, और बिना एक साझा भाषा के किसी भी गहरे संदेश का अर्थ का अनर्थ हो सकता है।
बिल्कुल, और इसी पर डॉक्टर कीनर के लेक्चर में एक बहुत ही मजेदार किस्सा है अनुवादकों की गलती का।
वो वाक्या सच में दर्शाता है कि संचार कितना नाजुक है। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि जब वो अफ्रीका में थे, तो उनके हौसा भाषा के दुभाषीय ने किसी शब्द का कुछ ऐसा गलत अनुवाद कर दिया कि पूरी भीड़ उन्हें खौफ से देखने लगी।
अरे वाह, मतलब उसने कोई भयानक शब्द बोल दिया था?
हाँ, उसने कोई ऐसा शब्द चुन लिया जो सुनने में मूल शब्द जैसा था, पर उसका अर्थ बहुत डरावना था। बाद में गलती सुधारी गई और सब जोर से हंसे, लेकिन प्राचीन इकोनियम में तो कोई ऐसा दुभाषिया था नहीं
जो तुरंत गलती सुधार दे। सही बात है, और इसी भाषाई खाई का सबसे खतरनाक रूप हमें लिस्त्रा में देखने को मिलता है। वहां तो पूरी स्थिति ही नियंत्रण से बाहर हो गई।
बिल्कुल, पॉल वहां एक जन्मजात विकलांग व्यक्ति को ठीक कर देता है। उसके लिए ये ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन लिस्त्रा के स्थानीय लोगों ने इसे ग्रीक पौराणिक कथाओं के चश्मे से देखा।
हाँ, वो ओविड की बॉजेस ऑफ फिलेमोन वाली कहानी है ना?
हाँ, वही फ्रिगियन किंविदंती। उस प्राचीन कहानी में यूनानी देवता ज्यूस और हर्मीस इंसान का रूप धरकर उसी इलाके में आए थे,
और किसी ने उनका स्वागत नहीं किया था सिवाय एक बूढ़े जोड़े के।
बिल्कुल, और इस अपमान से क्रोधित होकर उन देवताओं ने पूरे इलाके को एक भयंकर बाढ़ से तबाह कर दिया था। अब सोचिए, जब उन लोगों ने देखा कि दो अजनबी आए हैं और चमत्कार कर रहे हैं,
तो उनके दिमाग में तुरंत वही खौफनाक कहानी आ गई होगी। उन्हें लगा होगा कि देवता वापस आ गए हैं और इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहते थे।
निसंदेह उन्होंने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया। बर्नाबास जो थोड़े शांत रहते थे, उन्हें सबसे बड़ा देवता ज्यूस मान लिया गया, और पॉल जो बोल रहे थे, उन्हें संदेशवाहक हर्मीस मान लिया गया।
मतलब बात इतनी बढ़ गई कि शहर का एक पुजारी उन्हें खुश करने के लिए हम फूलों से सजा हुआ एक पूरा बैल लेकर आ गया बलि चढ़ाने के लिए।
हाँ, और पॉल और बर्नाबास को जब समझ आया तो उन्हें अपने कपड़े फाड़कर उस भीड़ को रोकना पड़ा।
ये दृश्य सोचने में जितना अजीब है, संचार के नजरिए से उतना ही शिक्षाप्रद है। लेकिन यहाँ पॉल की असली कला दिखती है। वो घबराकर वापस यहूदी धर्म ग्रंथों का हवाला नहीं देता।
बिल्कुल नहीं, उन मूर्ति पूजक किसानों को हबकूक या यशाया से क्या लेना देना। पॉल तुरंत अपनी रणनीति बदल देता है। वो उस समय के स्टोइक दर्शन और प्रकृति का उपयोग करता है।
मतलब वो सीधे आसमान, बारिश और फसलों की बात करने लगता है।
हाँ, क्योंकि एक किसान समाज के लिए आसमान से गिरने वाली बारिश ही सबसे बड़ा सच है। वो उनकी ही भाषा में उनके रोजमर्रा के संदर्भों का उपयोग करके उन्हें वापस वास्तविकता पर लाता है।
अगर आज के समय में देखें तो ये हम किसी कॉर्पोरेट ऑडियंस टारगेटिंग या बिजनेस पिच जैसा है। आप मार्केटिंग टीम के सामने फाइनेंस की भारी शब्दावली थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल, वहां आप विजन और कहानियों की बात करते हैं।
लेकिन मेरी एक चिंता है, अगर श्रोताओं को खुश करने के लिए हर बार संदेश का तरीका बदला जाए तो क्या मूल विचार के कमजोर पड़ने का खतरा नहीं रहता?
ये एक बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन डॉक्टर कीनर का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि पॉल ने अपने मुख्य संदेश से कभी समझौता नहीं किया। उसने केवल चर्चा का एंट्री पॉइंट, मतलब प्रवेश द्वार बदला था।
अच्छा, मतलब यहूदी प्रार्थनालय में उनका इतिहास एंट्री पॉइंट था और लिस्त्रा में प्रकृति।
सही कहा, मंजिल एक ही थी, बस वहां तक पहुंचने का रास्ता बदला था। क्या कहना है ये नहीं बदला, केवल कैसे कहना है उसे ढाला गया।
ये बहुत जरूरी स्पष्टता है, लेकिन श्रोताओं के हिसाब से रणनीति बनाने से जो शुरुआत में सफलता मिलती है, कभी कभी वो बहुत भारी विरोध भी ले आती है।
और यही हम मानव मनोविज्ञान के सबसे भयानक रूप को देखते हैं, जनमत या पब्लिक ओपिनियन पलटने की गति। लिस्त्रा की घटना इसका एक डरावना उदाहरण है।
हाँ, मतलब जो भीड़ कुछ ही पल पहले उन्हें भगवान मानकर बैल की बलि देना चाहती थी, वही भीड़ अचानक उन पर जानलेवा हमला कर देती है।
अंताकिया से कुछ विरोधी यहूदी वहां आते हैं, वो भीड़ को भड़काते हैं और सचमुच रातों रात भावनाएं पूरी तरह से पलट जाती हैं।
बैल की बलि से लेकर सिर पे पत्थर मारने तक का सफर, इतनी जल्दी, ये तो आज के इंटरनेट के कैंसिल कल्चर जैसा लगता है मुझे।
ये तुलना बहुत सटीक है।
मतलब एक दिन कोई सोशल मीडिया पर वायरल होता है, सब तारीफ करते हैं, और अगले दिन एक विवाद के कारण लोग उसे गालियां देने लगते हैं।
और इसके पीछे का विज्ञान भी एक ही है, घर्षण या फ्रिक्शन की कमी।
प्राचीन शहरों में पत्थरबाजी के लिए किसी को घर से हथियार नहीं लाना पड़ता था।
वो सड़क के पत्थर और छतों की टाइलें इस्तेमाल करते थे ना?
हाँ, छतों की टाइलें और सड़कों के पत्थर, जिन्हें कॉबल्स कहते हैं, वो इतने आसानी से उपलब्ध थे कि भीड़ चलते फिरते उन्हें उखाड़कर मारना शुरू कर देती थी।
बिल्कुल, आज के एक ट्वीट या कॉमेंट की तरह, हाथ में जो आया बिना सोचे फेंक दिया।
और भीड़ ने पॉल को तब तक मारा जब तक उन्हें लगा नहीं कि वो मर चुका है।
हाँ, और उसे मरा हुआ समझकर शहर के बाहर फेंक दिया। लेकिन पॉल बच जाता है, वो डर्बे नाम के एक दूर के शहर भाग जाते हैं।
पर इसके बाद जो होता है वो मेरा रोंगटे खड़े कर देता है। जब स्थिति थोड़ी शांत होती है तो पॉल एक ऐसा असीम साहस दिखाता है जो मतलब इंसान की समझ से परे है।
वो वापस उन्ही खतरनाक शहरों में लौटता है, लिस्त्रा और इकोनियम में, जहाँ उसे कुचला गया था।
कोई वापस क्यों जाएगा वहाँ?
इस वापसी को हमें संस्थागत निर्माण के रूप में देखना चाहिए। किसी भी नई विचारधारा को जिंदा रखने के लिए केवल भाषण काफी नहीं होता, एक ढांचा चाहिए होता है।
अच्छा, तो वो वहाँ जेरूसिया यानी बुजुर्गों या नेताओं को नियुक्त करने गया था।
हाँ, वो समुदाय को नेतृत्व देता है, और सबसे जरूरी बात, वो उन्हें एक कड़वा सच बताता है कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत क्लेश सहमे होंगे। वो कोई झूठी उम्मीद नहीं बेच रहा था।
और ये कड़वी वास्तविकता हमें इस यात्रा के सबसे जटिल पड़ाव पर ले जाती है। बाहर की भीड़ से बचना तो एक बात है, पर असली खतरा तब होता है जब वैचारिक दरारें अंदर से आएं।
बिल्कुल, और यही प्रारंभिक चर्च का सबसे बड़ा आंतरिक संकट सामने आता है, यरूशलम की परिषद।
यह विवाद का केंद्र बाहरी लोग नहीं थे, बल्कि अपनी ही मान्यताएं थी। सवाल ये था कि क्या नए गैर यहूदी सदस्यों को खतना जैसी कठोर यहूदी परंपराओं का पालन करना होगा।
ये केवल कोई रस नहीं थी, ये पूरी सांस्कृतिक पहचान का संघर्ष था। यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं टकरा रही थीं।
एक तरफ अंताकिया का उदारवादी दृष्टिकोण था कि बाहरी लोगों के लिए नियमों को लचीला बनाया जाए, और दूसरी तरफ यरूशलेम के फरीसियों का सख्त राष्ट्रवादी नजरिया।
और इस रूढ़ीवाद के पीछे का कारण समझना भी आवश्यक है। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि यरूशलेम में ये सख्त राष्ट्रवाद रातों रात नहीं आया था। राजा अग्रिप्पा प्रथम के समय से रोमन साम्राज्य के भारी दमन के कारण ये हुआ था।
मतलब उन्हें डर था कि अगर उन्होंने एक भी परंपरा छोड़ी तो वो रोमन संस्कृति में खो जाएंगे।
हाँ, तो ये कोई अच्छे बनाम दुरे की लड़ाई नहीं थी, ये दो ऐसे समूहों का तनाव था जो अपनी अपनी जगह सही थे। एक विस्तार चाहता था और दूसरा अपना वजूद बचाना चाहता था।
ऐसे ध्रुवीकृत माहौल में समाधान कैसे निकाला जाए, ये आज के लिए भी बड़ा सवाल है। यहाँ अंग्रब्बी स्कूलों के बहुमत के निर्णय वाले नियम का जिक्र आता है, जो बहुत दिलचस्प है।
ये लोकतांत्रिक सहमति का सबसे बड़ा उदाहरण है। रब्बी परंपरा में बहुमत के निर्णय को इतना महत्व दिया जाता था कि एक कहानी के अनुसार अगर आसमान से कोई स्वर्गीय आवाज भी आकर कहे कि बहुमत गलत है,
तो भी वो उसे नहीं मानते,
तो भी वो उसे खारिज कर देंगे, ये कहकर के कानून अब इंसानों के हाथ में है।
मतलब जमीनी फैसले इंसानों की समझदारी से तय होने चाहिए।
और यरूशलेम परिषद में भी इसी सर्वसम्मति की तलाश थी,
और यहीं पर जेम्स की कूटनीतिक मध्यस्थता काम आती है।
वो कोई नया नियम नहीं बनाते, बल्कि पुराने नियम का चतुर इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, वो एमोस 9 का हवाला देते हैं जिसमें एक भाषाई खेल छुपा हुआ था।
ये पुराने नियमों के ग्रीक अनुवाद, जिसे सेप्टुएजेंट कहते हैं, उसमें हुआ था।
वो एदोम और आदम वाला अनुवाद ना?
बिल्कुल, इब्रानी भाषा में एदोम एक दुश्मन राष्ट्र का नाम था, लेकिन ग्रीक अनुवाद में एक स्वर के हेरफेर से वो आदम बन गया, जिसका अर्थ है पूरी मानवता।
अरे वाह, मतलब जेम्स इसी का इस्तेमाल करके साबित करते हैं कि भविष्यवाणी केवल दुश्मन को जीतने की नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता को जोड़ने की थी। एक छोटे से अनुवाद ने दुनिया खोल दी।
और इस वैचारिक पुल के बाद जेम्स एक बीच का रास्ता निकालते हैं। वो कहते हैं कि नए बाहरी सदस्यों को हर सख्त नियम मानने की जरूरत नहीं है,
उन्हें बस मूर्ति पूजा, अनैतिकता और खून या कुछ खास मांस से बचना होगा, जो मूल रूप से नोआकाइड कानून था, राइट?
हाँ, नोआकाइड कानून, ये नूह के समय के बुनियादी नैतिक नियम थे। जेम्स का लक्ष्य ये साबित करना नहीं था कि धर्मशास्त्र में कौन सही है, उनका लक्ष्य था टेबल फेलोशिप।
टेबल फेलोशिप मतलब दोनों गुट एक साथ एक मेज पर बैठकर खा सकें।
बिल्कुल, प्राचीन काल में एक साथ बैठकर खाना ही समानता का सबसे बड़ा प्रतीक था। नियम अलग होते तो वो कभी साथ नहीं बैठ पाते।
तो क्या इसका मतलब यह है कि इतने बड़े धार्मिक बदलाव को एक मॉडर्न कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग की तरह सुलझाया गया, जहाँ परफेक्ट थियोलॉजी के बजाय व्यवहारिक कार्यप्रणाली पे जोर दिया गया?
एकदम सही निष्कर्ष है। जेम्स ने एक कुशल सीईओ की तरह काम किया। उन्होंने पहचान लिया कि अगर हर छोटी सैद्धांतिक बात पर अड़े रहे तो संस्था बिखर जाएगी।
उन्होंने बड़े लक्ष्य के लिए छोटी बातों पर समझौता किया, और इसके बाद जो पत्र भेजा गया वो सर्वसम्मति का एक मास्टरपीस था। उसकी भाषा बहुत ही हाई लेवल की ग्रीक थी,
और सबसे बड़ी बात, उस पत्र में यरूशलेम के सख्त नेताओं ने गैर यहूदी लोगों को भाई और बहन कहकर संबोधित किया था। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था,
ये दशकों पुराने सांस्कृतिक विभाजन को पाटने की कोशिश थी।
हाँ, ये इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि जब अलग अलग गुट जिद छोड़कर किसी मेज पर आते हैं तो मध्यस्थता से बड़े बड़े विवाद सुलझाए जा सकते हैं।
तो अगर इस पूरी यात्रा को हम समेटें तो ये अंत एक संदेश को अलग अलग संस्कृतियों के अनुसार ढालने से शुरू हुई, फिर इसने जनमत पलटने के खतरनाक झटके झेले,
और अंततः एक बहुत बड़ी परिषद में कूटनीतिक समझौते पर जाकर रुकी। आज के ध्रुवीकृत समाजों के लिए ये वाकई एक मास्टर क्लास है।
बिल्कुल, लेकिन आम श्रोताओं, इस पूरे स्रोत के बिल्कुल अंत में एक ऐसा तथ्य है जो इंसान की फितरत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
हाँ, वो विडंबना।
जी, यरूशलेम की परिषद में इतनी बड़ी सांस्कृतिक समस्या सुलझा ली गई। एकता का चरम बिंदु था वो। लेकिन इसके ठीक बाद पॉल और बर्नाबास, जो सालों तक सबसे करीबी साथी रहे,
जिन्होंने एक साथ पत्थरों की मार झेली थी,
बिल्कुल, उनके बीच एक अन्य साथी को लेकर व्यक्तिगत मतभेद पैदा हो गया और ये मतभेद इतना गहरा हो गया कि वो हमेशा के लिए अलग हो गए।
ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है।
सच में ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर इंसान दुनिया के सबसे बड़े वैचारिक और धार्मिक विवादों को कूटनीति और समझदारी से सुलझा सकता है,
तो क्या कारण है कि दो इंसानों के बीच के व्यक्तिगत संबंधों की दरारों को भरना दुनिया का सबसे मुश्किल काम साबित होता है।
यही वो गहरा विरोधाभास है जिसे हम आज श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ रहे हैं। बड़े सिद्धांत सुलझा लिए जाते हैं, लेकिन इंसानी अहंकार अक्सर अजेय रह जाता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।